الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين يا رب العالمين. آج هم إن شاء الله تعالى الله تعالى کی توفیق سے سورة البقرة آیت نمبر 264 سے 271 تک ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے. لیسن شروع کرنے سے پہلے ایک بات کو ذرا ذہن میں دہرا لیجئے کہ ہم یہاں پر بیٹھے کیوں ہیں. صرف ایک کلاس لینے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن کریم ہمارے اندر کی صفائی کرتا ہے. تو جب بھی آپ قرآن کے سامنے بیٹھیں، آپ کلاس میں بیٹھیں، تو یہ سمجھیں کہ میں اپنے اندر کو صاف کرنے کے لیے بیٹھی ہوں، اپنے تزکیے کے لیے بیٹھی ہوں، اور اس کے لیے مینٹلی ریڈی ہو کر آئیں کہ میرے اندر مجھے چینج لانا ہے اس کے مطابق جیسے قرآن کہہ رہا ہے. کیونکہ بہت ساری باتیں آپ کو ایسی ملیں گی جو کانٹروڈکٹ کرتی ہوں گی، جو اس سے فرق ہوں گی جو ہم کرتے ہیں. اور قرآن کریم کو سیکھنے کا ہمارا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہمارے اندر ہیں لیکن وہ قرآن کے مطابق نہیں ہیں، تو قرآن کے مطابق ان کو کر لیں، ہم اپنے آپ کو ڈھال لیں، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی میں چینج لے کر آئیں. کیونکہ اگر صرف ہم کلاس لینے کے ارادے سے بیٹھے ہوئے کہ کلاس ہو گئی اور کلاس شروع ہوئی، کلاس ختم ہوئی، بس کلاس کلاس کلاس، تو بس کلاس ہی رہ جائے گی، وہ تو یہ ایک وہ کلاسوں کی طرح نہیں ہے جیسے آپ کہیں میتھ انگلش پڑھنے جاتے ہیں، کوئی سائنس کا فارمولا آپ نے سیکھ لیا تو آپ کی جیت ہو گئی. تو وہ چیز ہے جو ہمارے اندر چینج لانے والی ہونی چاہیے، اور چینج ایک سیکشن میں نہیں ہوگی، کہیں مال کے حوالے سے ہوگی، کہیں کیریکٹر کے حوالے سے ہوگی، کہیں معاملات کے حوالے سے ہوگی، کہیں عبادات کے حوالے سے ہوگی. تو ڈفرینٹ چیزیں، ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف لائف کو قرآن ایڈریس کرے گا جب، تو اس ایسپیکٹ میں ہمارا اس وقت کا طرز عمل کیا ہے اس کو ہم چیک کریں گے، اور اس کے مطابق ڈائگنوز کریں گے کہ یہ بیماری، یہ مسئلہ میرے ساتھ تو نہیں ہے، اور میں نے کیسے فکس کرنا ہے. اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں کہ میری عمر کتنی بھی ہو چکی ہو، لیکن اگر میں قرآن کے سامنے بیٹھ کے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کے ارادے سے اس کو سیکھ رہی ہوں اور کوشش بھی کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کوششوں کو دیکھنے والا، وہ جانتا ہے کہ آپ کتنی سٹرگل کر رہے ہیں، کتنی دور سے آ رہے ہیں. جو جتنا دور سے آ رہا ہے اس کی نیکی اتنی بڑی ہے، اس کی سٹرگل بھی چونکہ اتنی بڑی ہوگی. تو اب جب آپ انشاءاللہ تعالی ان آیات میں، اور پچھلی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور آج بھی ہم دیکھیں گے، بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ جو ہم جانے انجانے میں کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں وہ بہت عام ہوتی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی اسی رو میں بیٹھ جائیں اور ہم بھی وہ کرنے لگے، کیونکہ سبھی وہ کرتے ہیں. تبھی تو فرق نظر آئے گا ایک قرآن پڑھنے والے میں اور ایک دوسرے بندے میں جس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا. اور اگر کوئی فرق بھی نہیں ہے، وہ جو قرآن نہیں پڑھ رہے وہ بھی، اور جو قرآن سیکھ رہے ہیں وہ بھی، ایک ہی برابر ہیں، ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، تو پھر ہماری یہاں کی بیٹھی بھی یہ ایکسرسائز ہے صرف، اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کا حاصل کچھ نہیں ہے، یہ بے نتیجہ ہے. جیسے آج یہ آ رہا ہے جو لفظ آیا نا، میں نے آپ کو بتایا، لا تبطلوا، نہ تم ضائع کرو، تو باطل کرنا کیا ہے؟ بے نتیجہ، جو چیز بے نتیجہ ہے، جس کا کوئی حاصل ہی نہیں ہے نا، وہ تو ضائع ہے. تو اس لیے हम अपनी एफर्ट्स को जाया ना होने दें, हमने इसे कुछ हासिल करना है। सबसे बड़ी चीज जो इससे हासिल होनी है वो ये कि हमारे अंदर वो चेंज आ जाए, हमारे अमल के अंदर वो चीज आ जाए जो कुरान से मतलूब है, जो अल्लाह ताला हमें हमारे अंदर देखना चाहता है। तो कुरान हमें रीशेप करने वाला होना चाहिए, हमारी जिंदगी को ढाल दे उस तरह। तो ढलते जाइए इसके मुताबिक, इसी की में कामयाबी है। तो देखते हैं आज की आयात हमें क्या सिखा रही हैं और किस तरह हमने अपने आप को माल के मामले में चेंज करना है। और ये जो हम समझते हैं कि हम सदका और खैरात बहुत करते हैं और हम बड़ा देते हैं अल्लाह के रास्ते में और इससे बड़े हम मुतमईन रहते हैं, हमने ये देखना है कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी चीज हो जो कि हमारे इन सदका और खैरात को, हमारे अल्लाह के रास्ते में देने को जाया करने वाली हो। इससे वॉर्न कर दिया गया, ओके, ये बहुत ही खतरनाक बात हो जाएगी अगर ये जाया हो गई चीजें। देखते हैं आयत नंबर 264, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तुबतिलू, ना तुम जाया करो सदकातिकुम, अपने सदकात को, बिल मन्नी वल अदा, एहसान जिताकर और अजियत देकर। इससे हमें एक बात पहली पता चली कि ईमान वाले के भी आमाल जाया हो सकते हैं। नेकी करना एक बात है और नेकी की हिफाजत करना दूसरी बात है। सिर्फ नेकी करना काफी नहीं है, ये भी जरूरी है कि वो नेकी बाहिफाजत आखरत में सेव रहे हमारे लिए, क्योंकि हमें तो उसकी जरूरत वहां पे है ना। कुरान करीम में कई जगह पे हमें पता चलता है, जैसे सूरह हुजरात में भी है, अंतहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशुरून, ये ना हो कि तुम्हारे आमाल जाया हो जाए और तुम्हें पता ही ना चले। इसके पता चलता है कि आमाल भी जाया हो जाते हैं। और यहां से पता चला, क्योंकि खास तौर पे यहां पे सदकात की बात आ रही है, तो यहां से हमें पता चला कि सदकात जाया हो जाया करते हैं। अल्लाहु अकबर। तो क्या चीज है जो इतना बड़ा जहर है कि वो सदके को जाया कर देती है? को कौन सा काम है? अब इंसान वो खुद ही कर लेता है, यानी कोई और नहीं आके उसके माल को, उसकी नेकियों को जाया कर रहा होता, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ही फरमाया है कि अल्लाह ताला नहीं जाया करता ईमान वालों के आमाल को, अल्लाह ताला उनको सेव करता है। लेकिन इसका मतलब कोई चीज ऐसी है जो इंसान खुद ही करता है जिसकी वजह से आमाल जाया हो जाते हैं, तो वो क्या चीज है? ला तुबतिलु सदकातिकुम बिल मन्नी वल अदा, मन से और अदा से। और हम पहले देख चुके हैं कि मन क्या है, एहसान जिताना और अजियत देना। यानी ये कहा जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि कोई चीज ऐसी है जो तुम्हारे सदके को जाया कर देगी। पहले तो ये बात है कि जो भी सदकात हैं वो क्या चीजें हैं? वो अल्लाह ताला के रास्ते में कुछ भी देना, ये सदका है, और कोई भी नेकी सदका। यहां पे खास तौर पे चूंकि माली नेकी का सवाल आ रहा है, वो सदका जो माली सदकात है, वैसे तो कोई भी नेकी सदका है, आपका अपने भाई को मुस्कुरा के देखना भी सदका है, लेकिन यहां पे माली सदकात की चूंकि बात आ रही है, तो उस जिमन में हम देखते हैं कि जो भी इंसान की अपनी यानी जरूरियात को पूरा करने के बाद वो चाहे अपने घर वालों पे खर्च करता है वो भी सदका है, रिश्तेदारों पे खर्च करता है वो भी सदका है, गुरबार मसाकीन में अल्लाह के दीन की तरवीज के लिए जो भी खर्च करता है वो सब सदकात में आ जाते हैं। हमें एक तो बात ये समझनी चाहिए कि जो माल हमारे पास है वो हमने जब कमा लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं जिधर चाहूं उड़ाती फिरूं। अब मेरा जिधर मर्जी आए, मैं जहां मर्जी खर्च करूं, अब ये मेरे पैसे हैं? नहीं। आपने पहले भी देखा, मिम्मा रज़क़नाकुम, ये आया था, हमने जो तुमको रिज़्क दिया उसमें से खर्च करो। खर्च करने की बार बार जब बात आ रही है, तो खर्च हम कोई अपने पास से नहीं कर रहे, क्योंकि हम लेकर कुछ भी पैदा नहीं हुए कि हम अपने साथ कोई पैसा लेकर आए थे दुनिया में। अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया, तो ये उसकी अमानत है हमारे पास। जो पांच सवाल हैं, जिनका जवाब दिए बगैर कयामत के दिन इंसान के पैर हिल नहीं सकेंगे हशर के मैदान से। उन फाइव आउट ऑफ फाइव, टू क्वेश्चंस ऐसे हैं जो माल के मुतल्लिक हैं। पहला कि माल कहां से कमाया, और दूसरा माल कहां खर्च किया। तो सोचें कि आपको पांच में से अल्लाह ना करे दो सवालों में फेल हो गए तो क्या होगा। इनके जवाब दिए बगैर कोई हिल नहीं सकता। तो जहां कमाई में इंसान बहुत एहतियात करे कि ये हलाल कमाई हो, वहां पे दूसरी चीज में भी एहतियात करने की जरूरत है कि खर्च कहां हो रहा है। ऐसी चीजों में जो फजूल है, ऐसी चीजों में जिनकी जरूरत नहीं है, ऐसी चीजों में जो जस्ट फॉर फन सेक है, लोग उधर भूखे मर रहे हों और हम अयाशियों में उड़ा रहे हों माल को। जब अल्लाह ताला के रास्ते से माल हट जाता है ना, तो अक्सर इसराफ में लगता है, तबजीर में लगता है। तबजीर वो है जो बिल्कुल ही रोंग जगह है, जहां पे खर्च होना ही नहीं चाहिए वहां पे लगता है। इसराफ है कि बेजा खर्च होना, चाहे वो कपड़े पे है, चाहे वो खाने पीने पे है, चाहे वो किस चीज में भी है। लेकिन किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कर दें, किसी को खाना खिला दें, किसी की यतीम की किफालत कर दें, ये सब अल्लाह के रास्ते में। और आपने पहले देख लिया कि खास तौर पे अल्लाह के दीन के रास्ते में कोई आपने खर्च किया हो तो एक दाना 700 के बराबर हो गया था। ठीक है, अब 700 के बराबर करने के लिए जरूरी है कि माल को बड़ी ध्यान के साथ खर्च किया जाए, बहुत अकल के साथ खर्च किया जाए, और खर्च करने में ये देखा जाए कि ये खर्च मुझे आखरत में फायदा देगा या नहीं। कारून के किस्से में उसको कहा गया था कि देखो अल्लाह ने तो जो तुम्हें माल दिया है ना, इससे अपनी आखरत बना लो। उसको ये कहा जाता था। अल्लाह ताला दुनिया में तिजारत करने से मना नहीं करता, मगर जो इजाफी हो उससे आखरत कमाई जा सकती बड़ी आसानी से। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जहन्नुम से बचा लो अपने आप को, चाहे खजूर का टुकड़ा दे के। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास तो खजूर का टुकड़ा ही दे दो। और ये सदकात कयामत के दिन इंसान के लिए साया बन जाएंगे, ऐसा साया जबकि कोई साया नहीं होगा। जब तक लोगों का हिसाब किताब हो रहा होगा, उस वक्त तक ये सदका ही होगा जो उसको शेड देगा। तो ये सदकात इंसान को बहुत काम आने वाले हैं, इनसे अपनी आखरत कमाई जा सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, कसम है रब्बे काबा की, बहुत ज्यादा खसारा पा लिया। सहाबा ने अर्ज किया, किसने, इसको बहुत ज्यादा खसारा हो गया? फरमाया, वो जो बहुत ज्यादा मालदार है। यानी जितना कोई मालदार है उतना ही बड़ा वो घाटे में है। हमें लगता है ना वो कामयाब है, वो घाटे में है, सिवाय उसके, उस मालदार के जो इस तरह दे आगे पीछे दाएं बाएं। मगर फरमाया ऐसे लोग बहुत ही कम है। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। यानी माल होना ये दुनिया में शायद इंसान को बड़े स्टेटस पे फाइज करता हो, लेकिन आखरत में उसके लिए ये बड़ी मुसीबत बन जाएगा अगर उसने आगे पीछे दाएं बाएं, यानी आगे पीछे दाएं बाएं का मतलब क्या है, अल्लाह के रास्ते में जैसे भी जिधर से भी कोई पुकार आई उसने खर्च किया, जो जाहिर में आगे से आने का मतलब जो जाहिर में था, जिसने उससे मांगा उसको भी दिया, जो पीछे था उसको भी दिया, दाएं भी दिया बाएं, यानी वो खर्ची करता जाता था अल्लाह के रास्ते में। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, सखी जो है अल्लाह के करीब है, जन्नत के करीब है, लोगों से भी करीब है, लोग भी उसको पसंद करते हैं जो सखी है, और दोजख से दूर है। और बखील जो नहीं यानी खर्च करता अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह से भी दूर है, जन्नत से भी दूर है, लोगों से भी दूर है, और जहन्नुम से करीब है। और जाहिल सखी इबादत गुजार बखील से अल्लाह को ज्यादा महबूब है। चाहे कोई जाहिल है लेकिन सखी है ना, वो उससे ज्यादा महबूब है अल्लाह ताला को जो बखील है, चाहे वो इबादत गुजार ही क्यों ना हो। इसे आप सोच रहे हैं, तिर्मिजी की रिवायत है कि अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना कितना जरूरी है, और वो इंसान को कितना जन्नत के और अल्लाह ताला से करीब कर देता है, लोगों का भी महबूब बना देता। लेकिन हमने सखावत किस चीज को समझा है? लुटाने को, इसराफ को, बड़ा सखी है। और अगर कोई बहुत ज्यादा धूमधाम ना करे और धूम धड़के से खर्च ना करे और फजूल खर्ची ना करे तो हम कहते हैं बड़ा कंजूस है। कंजूस वो नहीं है, कंजूस वो है जो अल्लाह के रास्ते में नहीं खर्चता। चाहे वो शादियों पे बेपनाह खर्च कर रहा हो, चाहे वो पहनने ओढ़ने में बेपनाह खर्च कर रहा हो, वो बखील है, इसलिए कि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में उसका हाथ रुक जाता है। और एक बंदा चाहे वो इन सारी चीजों में नहीं खर्च करता लेकिन अल्लाह ताला के रास्ते में बहुत खर्च करने वाला, वो सखी है। तो ये ना समझे कि जो बड़ा जाया करता है उसको माल की परवाह ही नहीं है, वो इधर फेंकता फिरता है, बड़ा जी बड़ा देने वाला, बड़ा सखी है, बड़ा सखी है। नहीं, वो सखी नहीं है। और देखें सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों की ड्यूटी लगा के रखी हुई है कि हर सुबह वो फरिश्ते उतरते हैं और एक दुआ करता है, या अल्लाह जो खैर के रास्ते में खर्च करने वाला उसको बदला अता फरमा, दूसरा कहता है या अल्लाह जो बखील है उसका माल बर्बाद कर दे। देखें हर सुबह फरिश्ते दुआ कर रहे हैं, और फरिश्तों की दुआएं कितनी ज्यादा कबूलियत वाली हैं। अल्लाह ताला ने उनका काम ही ये लगाया हुआ, अल्लाह के इज़्ज़त के बगैर कुछ नहीं करते, उनकी दुआ कबूल ही कबूल है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि तुम ये दुआएं करो। तो अब जमीन पे जितने लोग इस वक्त सखावत कर रहे होंगे वो फरिश्तों की दुआएं पा लेंगे, और जो बुखल कर रहे होंगे वो उनकी बददुआ पाएंगे। अल्लाहु अकबर। तो यहां पे एक तो हमें ये पता चला कि सदका कितना करना हमारे लिए बेनिफिशियल है, दूसरा ये कि अब हमें ये भी पता चला, ईमान वालों को मुखातिब करके ये बताया गया, एक चीज से मना किया गया, सदका तो करते हो लेकिन ये ना हो कि तुम्हारा सदका जाया हो जाए तुम्हारे अपने किसी अमल से। तुम्हारे ईमान का तकाजा ये है, तुम्हारा ईमान का की रिक्वायरमेंट है कि जब तुम सदका करो किसी के ऊपर तो उसको तकलीफ ना दो, एहसान ना जताओ, उसका अपना गुलाम बनाने की कोशिश ना करो। नेकी तो वो ही होती है जो अल्लाह की खातिर की जाए, वो इसलिए थोड़ी होती है कि बदला चाहे। अब किसी यतीम को पढ़ा लिखा दिया, या किसी बेवा पे खर्च कर दिया, या किसी गरीब रिश्तेदार की मदद कर दी, उसको सेटल करा दिया, अब हमारा दिल चाहता है अभी हमारी इज्जत ही करता रहे, और ये बस हमारी जब आए तो हमारे आगे झुक झुक के रहे और हमारा एहसान मानता रहे, हमसे बड़ी तमीज से पेश आए। अब वो नहीं आता तो हमें तो बड़ा दुख होता है, देखो जी मैंने तो इसके साथ ये किया और देखो इन्होंने हमारे साथ क्या किया, हमने तो अपने रिश्तेदारों को सेटल कराया, उनको पढ़ाया लिखाया। बहुत सारी औरतें कहती हैं हमारे शौहर ने इतना किया अपने बहन भाइयों के साथ, फलां के साथ, फलां के साथ। एहसान नहीं जताना, किसी को तरगीब देने के लिए कोई बात बता सकते हैं कि देखें कि कितना नेक इंसान है कि इसने इतनी नेकी की, मसलन कोई थर्ड पर्सन कह रहा है, लेकिन खुद बंदा कहना शुरू कर दिया हमने तो ऐसा किया, हमने तो इनके साथ ये किया, और इन्होंने पलट के क्या किया। अब वो जो पलट के कर रहे हैं ना, ये नहीं है कि वो कहा जा रहा है कि वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं और उनकी तो कोई कोई पूछ नहीं है और वो ठीक है और आप गलत हैं, ये नहीं कहा जा रहा। देखिए यहां पे याद रखें, बात हो रही है सदका देने वाले, उन जो लेने वाले उनसे नहीं बात हो रही, उनको अलग जगह पे कहा गया। जब उनको कहा गया ना कि जो तुम्हारे ऊपर एहसान करे उसका एहसान मानो, जो लोगों का एहसान नहीं मानता वो अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता, तो उनको सेपरेट जगह पे बात बताई गई है। लेकिन यहां पे उन लोगों से बात की जा रही है जो खर्च करने वाले हैं, कि आपने होप नहीं लगाना, आपने उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना कि ये अब हमारे साथ क्या कर रहे हैं। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था ना, अक्लमंद वो है जो गुनाह करके याद रखे और नेकी करके भूल जाए। गुनाह किया है ना तो उसको याद रखो कि ये मेरे से गलती हो गई है, आए क्यों हो गया, उसके ऊपर रोते रहो, शर्मिंदा रहो, तौबा करते रहो। नेकी को भूल जाया करो, नेकियों को गिन गिन के ना रखा करो, फलाने वक्त में फलां के साथ हमने ऐसा किया था, फलां तो आप पूछते ही नहीं है, दुनिया बड़ी मतलबी है, हमने तो ये किया और इन्होंने ये किया। देखिए ये सारी चीजें बताती हैं कि हमने अल्लाह की खातिर नहीं किया, या हमने कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर रखी, कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये तमा ये लालच जरूर था कि ये भी हमारे साथ पलट के कुछ ऐसा करें। अच्छा अब हमने तो कुछ कर लिया, दे तो सकते नहीं हमें माल, चलो माल ना दें इज्जत ही दें। तो ये शैतान ऐसा करवा देता है, इंसान के दिमाग में ऐसे थॉट्स लाता है ताकि उसकी नेकी जाया हो जाए। अब ये नेकी ऐसी जाया होती है कि देखें दुनिया में भी कुछ नहीं मिला, जाहिर है माल चला गया, और आखरत में सोचा था कि ये हमने बड़ा एहसान किया अपने रिश्तेदारों के साथ या और जिसके साथ भी, ज्यादातर तो रिश्तेदार होते हैं जिनसे हमें बहुत ज्यादा गिले शिकवे और शिकायतें होती हैं, या कोई दोस्त अहबाब भी हो सकते हैं, कि हमने तो इनके साथ इतना किया तो अब ये हमें आखरत में काम आएगी नेकी। देखो ना कितनी बड़ी हमने नेकी की, इनका तो कोई पूछने वाला नहीं था, हमने उस वक्त में इनके साथ ऐसे किया। अब हमारा जहन क्या कह रहा है कि आखरत में ये तो मेरे लिए सेव होगा, लेकिन वो जाया हो चुका, बल्कि जाया ही नहीं, आप इससे अंदाजा करें ये इतनी ज्यादा डरा देने वाली हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन लोग ऐसे हैं अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना उनसे बात करेगा, ना उनकी तरफ रहमत की नजर से देखेगा, ना उनको पाक करेगा, और उनके लिए जहन्नम है। एक वो जो तहबंद को टखनों से नीचे रखता है, ये मर्दों के लिए, मर्द जो अपने टखनों को कवर करके रखते हैं अपनी पैंट से, सॉक से कवर किया हुआ है वो कोई मसला नहीं, ऊपर वाला कपड़ा जो इतना लंबा करें कि टखने कवर हो जाए। उलट हो गया ना, औरतों ने अपने टखने नंगे कर लिए, जिनको कहा गया था वो जितना मर्जी लंबा कर लें लिबास, उनको कोई मसला नहीं है, उनकी इसके ऊपर कोई बाजपुरस नहीं है। मर्दों को कहा गया था नंगा रखो, उन्होंने कवर कर लिए। तो वो जो अपने तहबंद को टखनों से नीचे रखता है, नंबर टू एहसान जिताने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जहन्नुम वाले हैं। सहाबा ने पूछा कौन, फरमाया जो एहसान जिताने वाले हैं, और इतना एहसान जिताया जाता है खानदानों में देख ले या जानने वालों में देख ले। हाँ सिर्फ वहां नहीं होता जहां पे हम जानते ही नहीं थे, हमने कहीं डोनेट कर दिया किसी मुल्क में, आपने कोई डोनेशन भेज दिया मसलन किसी यतीम खाने में, किसी मदरसे में, कहीं आपने डोनेशन दिया किसी मस्जिद में, तो फिर शायद इस तरह से ना हो। लेकिन जहां पे आप किसी को जानते हैं वहां पर बहुत ज्यादा चांस होता है कि बंदा अपना सदका जाया कर देता है, क्योंकि जिस दिन भी दूसरा उसके साथ जरा भी तुर्शरुई से पेश आता है उसको फौरन याद आता है मैंने तो ऐसे किया था, ये देखो ऐसे कर रहा। और तीसरा वो शख्स है जो अपने माल को सौदे को झूठी कसम खा के बेचता है, और हर बाजार में ये हो रहा है, बाजी ये तो इतने का नहीं है, तो इतने की तो मेरी खरीद भी नहीं है, कसम खुदा की इतने की तो मैंने कभी वो मुझे इतने का तो पड़ा भी नहीं है खुद भी, अब उतने का ही दे रहे होते हैं। अल्लाह अकबर। तो ऐसे लोगों की तरफ अल्लाह ताला उनसे बात ही नहीं करेगा, रहमत की नजर जिससे जिसको नहीं देखेगा वो उस जन्नत में जाएगा कैसे, उसको पाक ही नहीं करेगा जन्नत में कैसे जाएगा, वो जहन्नुम वाला है। हमने पहले पढ़ा ना, अच्छी बात कह दो या माफ कर दो वो बेहतर है किसी को सदका दे के और उसके बाद उसके ऊपर एहसान जताना। अल्लाह अकबर। यार वहां पे आया था ना, अल्लाह ताला गनी और हलीम है, यही सिफात अल्लाह ताला हमारे अंदर देखना चाहता है कि हम बेपरवाह हो जाएं और हिल्म आ जाए हमारे अंदर, हिल्म तहम्मुल, ये नहीं कि फौरन किसी को परेशान जताना शुरू कर दिया। एक सहाबी से आपसे सलम ने फरमाया था ना कि आपके अंदर ऐसी सिफात है कि जो जूम में आवाज आ रही है ऐसी सिफात है तुम्हारे अंदर कि जो अल्लाह ताला को बहुत महबूब है, और उनमें एक थी हिल्म तहम्मुल बुर्दबारी, और दूसरी थी ठहराओ वकार, यानी बेसब्रे ना हो जाया करो, बेसब्रे हो के फौरन दूसरे को ताने ना देना शुरू कर दिया करो, उसको याद ना दिलाना शुरू कर दिया करो। याद नहीं है वो, उसको तो भूल गया हुआ, याद नहीं है फलां वक्त में ऐसा हुआ था तो हमने ऐसा किया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर ऐसा करोगे नेकी भी गई और ईमान में भी कमी होती है, क्योंकि ये ईमान वाले की शान ही नहीं है। तो बताया गया ऐसे ना बनना, क्योंकि ये किसकी तरह है, कल्लदी युन्फिकु मालहु रिया नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ये तो अगर तुम ऐसा करोगे ना, ये तो उस बंदे की तरह तुम कर रहे हो जो दिखावे के लिए खर्च करता है और उसका ईमान अल्लाह और आखरत पर नहीं है। ये कौन है? मुनाफिक। तो मुनाफिक की तरह ना हो जाना, जो मुनाफिक भी खर्च किया करते थे, लेकिन वो खर्च क्यों करते थे, लोग देख लें, लोग हमारी तारीफें करें, लोगों में हमारी शोहरत हो जाए, देखो देखो कितना दिया इसने, कितना अच्छा बंदा है, कितना नेक है। तो इसलिए ना दो, यानी ऐसे बंदे की तरह ना तुम हो जाओ। और जिसका ईमान अल्लाह और आखरत के दिन पर नहीं है, क्योंकि जब इंसान का ईमान अल्लाह और आखरत पे वाकई होता है तो फिर उसको ये होता है कि आखरत में मुझे इसका बदला मिलना, और वो वहां के लिए उम्मीद रखता है, वो यहां पे किसी से कुछ नहीं चाहता। लेकिन मुनाफिक का मसला ये है कि उसका ईमान अल्लाह पर भी नहीं और आखरत पर भी नहीं, इसीलिए वो यहीं पे उसका बदला चाहता है। तो ऐसे बंदे की तरह ना हो जाना जो ऐसा करता है, यानी जो मुनाफिक, इस तरह की मुनाफिकों की ये खसलत है, उन मुनाफिकों की तरह तुम ना हो जाना। फिर एक मिसाल बताई गई, मिसाल क्यों दी जाती है कुरान करीम में, मिसालें ऐसे नहीं हमारे मजा लेने के लिए, ये नहीं, बात को समझाने के लिए कि आपको बात अच्छी तरह समझ आ जाए। अब मिसाल क्या दी गई, फमसलहु, तो उसकी मिसाल कैसी है, इस शख्स की मिसाल कह सकते हैं जो रियाकार है, या जो इस तरह से खर्च करता है दिखावा करके, या जो मन और रजा देता है सदका करके, उसकी मिसाल कैसी है, कमसरी सफवान, उसकी मिसाल ऐसी है चिकने पत्थर की तरह, अलैहि तुराब, उसके ऊपर मट्टी है, फअसाबहु वाबिलुन फतरकहु सलदा, तो पहुंचे उसको तेज बारिश तो छोड़ दे उसको चटियल। अब कैसी मिसाल है, अब इस मिसाल को समझें कि एक पत्थर है, वो चिकना पत्थर है, उस पर कोई चीज ठहरती नहीं है। अब उसके ऊपर तुराबुन, थोड़ी सी मट्टी उसके ऊपर बैठ गई। अब किसान ने या एक बंदे ने समझा कि मट्टी पड़ी हुई है तो यहां पर मैं बीज बो देता हूं ताकि कुछ उग जाए। अब वो वहां पे बीज बोता है, मेहनत करता है, कुछ उगाने की कोशिश करता है, मगर एक जोरदार बारिश आती है और सब वॉश आउट हो जाता है, मट्टी गायब। वो जो बंदे ने मेहनत की थी और जो समझा था कि ये मुझे काम आएगा, ये यहाँ पे मैं सब्जा उगा रहा हूं या कुछ भी चीज उगा रहा हूं वो मुझे काम आएगी, वो सब गारत हो गई। ऐसी गारत हुई कि तो नजर ही नहीं आ रही कि कभी थी भी कि नहीं। जो ही बारिश पड़ी पत्थर धुल के बिल्कुल साफ हो गया। ऐसे ही इन लोगों का खर्च करना है, जो कि खर्च करने के बाद मन और अज़ा तकलीफ देते हैं दूसरे को, हर्ट करते हैं दूसरे को, एहसान जताते हैं दूसरे के ऊपर, तो उनकी सदका भी ऐसे ही हो जाता है जैसे कि इस आदमी का, इस आदमी की मिसाल है। बारिश तो अच्छी चीज है, बारिश से में तो कोई फर्क, मगर जब चिकनी सतह पे मट्टी होगी तो वो बिल्कुल धुल गया और बीज भी जाया गया, मेहनत भी जाएगी, यानी जो उसने सरमाया लगाया था वो भी जाया गया, उसकी मेहनत भी जाया गई, बिल्कुल बेकार हो गया। तो इतनी खतरनाक चीजें हैं ये, रियाकारी करना या एहसान जिताना या तकलीफ देना। और इसी को इसलिए बताया गया है, ये ना हो कि इंसान आज सदको खैरात करे, किसी को की मदद कर रहा है, किसी का ख्याल कर रहा है और अपने आप में समझता जा रहा है, मैं बहुत अच्छी नेकियां कर रहा हूं, मैं तो कितना चैरिटी वर्क करता हूं, मेरे तो कितना, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि इसके बाद इसको संभाल के भी तो रखना था, कहीं शो ऑफ कर दी, हमने तो इतना दिया है, हम तो इस मस्जिद को इतना देते हैं, पता है ये मस्जिद हमारे डोनेशन से ही बनी है, या एहसान जता दिया या किसी को तकलीफ दे दी उसके बाद कि तुम क्या थे और आज देखो ना हमारे टुकड़ों पे पला हुआ ये, इस तरह की बातें कर देना दूसरे के दिल को इस कदर तकलीफ दे देता है। अब ये सारा करके गारत हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। अल्लाह अकबर। अब देखें ये कितनी खतरनाक बात है, और ये अक्सर इंसानों का मामला है। देखने में बजाहिर सभी बड़े अच्छे अच्छे काम करते हुए नजर आ रहे होते, मगर हालात का एक झटका आता है, सारी हरियाली खत्म हो जाती है और वो एक सूखे पत्थर की तरह होते हैं। इसी को एक और एंगल से देखते हैं। आखरत में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन वैसे भी नेक अमल इंसान इस दुनिया में अपना जाया कर देता है, और दुनिया में ही वो जो ऊपर उसने अपना एक चढ़ाया होता है ना, हॉल या एक एक लबादा ओढ़ा होता है, एक कैमोफ्लैज किया होता है, वो दुनिया में ही सामने आ जाता। एक जगह पे खड़ा हुआ एक इंसान बड़ी तकरीरें कर रहा है, बड़ी इंसाफ के ऊपर बातें कर रहा है, वो ही अपने घर में जाके ना इंसाफी कर रहा होता। एक इंसान जो मस्जिद में है, बड़ी खुशू के साथ नमाज पढ़ रहा है, रुकू और सज्दे बड़ी आजी के साथ कर रहा है, मस्जिद से बाहर निकलते ही वो इतना मुतकब्बिर इंसान है, उसकी गर्दन अकड़ी हुई है और खुद पसंदी उसके अंदर है। एक बंदा हकूक के ऊपर बड़ी बातें करता है, दूसरों को बड़ा दर्स देता है हकूक का और आला जरफी का, लेकिन जब अपना मामला आता है तो कोई किसी का हक उसको याद ही नहीं होता। तो दुनिया में इंसान के कच्चे छट्टे खुलने शुरू हो जाते हैं। ये दुनिया इम्तिहान की दुनिया है, हर एक की आजमाइश हो रही है। और मैंने आपको पहले भी बताया था एक लेक्चर में कि ये जो दुनिया में आपको नॉर्मल सब लोग नजर आते हैं, तो साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि ये सब नॉर्मल नहीं है, असल में नॉर्मल हालात में आपको नॉर्मल नजर आ रहे हैं। हकीकत यह है कि जो ही हालात जरा से चेंज होते हैं तब पता चलता है कौन नॉर्मल है इनमें और कौन सारे एब नॉर्मल फिर रहे हैं। हाँ, तो इंसान का पता गैर मामूली हालात में चल जाता है, उसके सब चीजें वाजे हो जाती हैं। सबर का लेक्चर देना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके बाद जब हमारी कोई कहीं हम सबर की जगह पर आते हैं, कहीं हमें किसी से कोई तकलीफ पहुंचती है, तो उसके बाद हम सबर का कितना मुजाहिरा करते हैं। तो असल बात यह है, आदमी उस वक्त नाकाम होता है जिस वक्त सबसे ज्यादा उसको वहीं तो सबूत देना होता है कामयाबी का। हक की बातें करना और तकरीरें करना बड़ा आसान होता है, या लोगों के साथ दोस्ती के वक्त खुश अखलाक बने रहना बड़ा आसान होता है, मगर तब पता चलता है जब बिगाड़ का कोई वक्त आता है, तब कौन कितना खुश अखलाक है। अब ये जो सफवान है इसके ऊपर मट्टी आ गई और उसके ऊपर एक खेती है, ये खेती जो है ना नुमाइशी खेती है, सिर्फ दिखावे की खेती है, नजर आ रही है कि खेती है, बड़ी ग्रीन है। आप इमेजिन करें ना, एक चट्टान थी उसके ऊपर मट्टी थी, उसके ऊपर खेती उगने शुरू हुई, बड़ी लहलहा रही है। अब ऐसी खेती देख के इंसान बड़ा खुश होता है, बड़ी बड़ी हरियाली है, बड़ा मतलब सब्जा उगा हुआ है, क्या बात है। सिर्फ देर होती है एक बारिश होने की, वो झूठी खेती जो है वो सारी एक्सपोज हो जाती है, ये कुछ भी नहीं है। सोचें कयामत का जलजला और उसका सैलाब और कितना सख्त होगा, उस वक्त ये सारी झूठी खेतियां पानी में बह जाएंगी और इंसान एक्सपोज होके रह जाएगा, उसके लिए कुछ भी नहीं होगा, खाली हाथ रह जाएगा। ओके, वो सब जो उसने उगाया था, जो मेहनत की थी उसने, वो तो उसने चिकने पत्थर पे कर दी थी। वो तो उसने जो मेहनत की थी, उसके साथ मन था, आजा थी, रया थी। अल्लाह हु अकबर। तो हम आज जो भी तोहफे तहाइफ देते हैं, दावतें करते हैं, खुश अखलाकी बरतते हैं, किसी के काम आने के लिए दौड़ते हैं, दूसरे के मसले को अपना मसला बना लेते हैं, गम के वक्त में उसकी इजहारे हमदर्दी के लिए उनके घर पहुंचे होते हैं, खुशी के मौके पे मुबारकबाद देने के लिए मिठाई के डब्बे ले जा रहे होते हैं, कोई हमसे बुरी बात करता है हम गुस्से को पी जाते हैं और हम समझते हैं हम बहुत बाखलाक हैं, हम कितने अच्छे हैं और कितना बड़ा ये अमल है जो हम कर रहे हैं खुश अखलाकी का। मगर देखें तो सही, क्या ये हमारे सारे मामलात सिर्फ उन लोगों के साथ हैं जिनसे हमारा कोई मफाद वाबस्ता है, जिनसे हमें उम्मीद है कि वो किसी वक्त में हमारे काम आ सकते हैं, या जिनसे हम डरते हैं, या जिनके जोर का या रोब का हमारे ऊपर कोई यानी कोई कोई हमारे ऊपर इफेक्ट है, या उनकी कुव्वत का, या उनकी कुर्सी का, या जिनसे कट के हम समझते हैं कि अल्लाह इनसे अगर हम कट गए ना तो वो सारे लोग ही हमसे कट जाएंगे, और इनसे हम कांटेक्ट रखें तो सारे लोग हमसे जुड़े रहेंगे। तो ये तो मफाद परस्ताना खुश अखलाकी है, मफाद परस्ती है। असल तो तब पता चलता है जब मामला किसी ऐसे बंदे के साथ हो जिसके लिए जिसके साथ कोई भी इनमें से कोई भी चीज ना हो, ऐसे मौके पे हम क्या करते हैं। अब भी क्या हमें उतना ही शौक होता है आगे बढ़ के सलाम करने का और उनको दावतों पे बुलाने का और उनकी मुश्किलों में काम आने का और उनकी जरूरत और उनके मसले को अपना मसला बनाने का, जहां से हमें कुछ भी नहीं मिलना। और वो ऐसे लोग हैं ही नहीं कि इनसे कट के हमें लोग दूसरे भी छोड़ दें, या इनका कोई बहुत बड़ा रोब हो, या दबदबा हो, या कुर्सी हो, या इनसे हमारा कोई काम बनना हो, कुछ भी नहीं है। तब पता चलता है तो हमारी खुश अखलाकी, हमारी इंसानियत किसके साथ है। अगर इस किस्म की है तो इसकी अल्लाह ताला के नजदीक कोई वैल्यू नहीं है। अल्लाह ताला के यहां तो बदला सिर्फ उस अमल का जो खालिस उसकी रजा के लिए हो, आखरत की निजात के लिए हो। जो ये काम हम दुनिया में अपने मामलात ठीक रखने के लिए करते रहते ना, इसका कोई बदला नहीं है। जो फिर हमने किया वो तो अपनी दुनिया बनाने के लिए किया, अब दुनिया में उसका बदला मिल जाता है, अब आखिरत में तो कोई बदला नहीं। तो इस तरह हम अपने आमाल को जाया करते हैं। बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखने की जरूरत है हमारे आमाल कैसे हैं। हमारा कहीं मसला यही तो नहीं है कि हम इंसानों के दरमियान अपनी जगह बनाने में लगे हुए, हालांकि अनकरीब हमें तो अल्लाह ताला के दरबार में पेश होना है। हम दुनिया में इज्जतें ढूंढने में लगे हुए, कामयाबी ढूंढने में लगे, हालांकि बहुत जल्दी हम आखिरत में दाखिल होने वाले। हम में से हर कोई जिंदगी से ज्यादा मौत से करीब है, मगर हम में से हर एक जिंदगी के मसलों में ही उलझा हुआ है। मौत के मसले के लिए कोई फिक्रमंदी नहीं और ना ही जरूरत महसूस करता है। हर एक ने अपने लिए कोई ऐसी चीजें बस सोच रखी है कि बस ये है जो मेरी नेकी है और मैं बस इसके साथ इनाफ है मेरे लिए। अपने इर्द गिर्द हमने खुश ख्यालियों का घरौंदा बना लिया हुआ, एक ड्रीम वर्ल्ड है उसके अंदर जी रहे हैं, और ये एहसास ही नहीं कि आखरत के मामला तो बहुत शदीद है और बहुत बारीक बीन है ना। अल्लाह ताला बहुत बारीक बीन है, अंदर तक नियत को देख लेता है। हुस्सिला मा फिस सुदूर, उस दिन निकाल लिया जाएगा जो सीनों के अंदर है। इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर, वो सीनों के अंदर जो भेद है ना उनको भी निकाल लाएगा, वो इतना तक जानता है। और ये जो हमारा खुश फहमियों के हमने एक बनाए हुए घरौंदे, ये ना हो तिनकों की तरह बह जाए। हम यहाँ पे बड़े खुश रहे हैं कि हम बड़ी तकरीरें करते हैं, हम इस्लामिक हीरोज हैं, हम बड़े दीनदार कहलाते हैं, हम बड़े कुरान वाले कहलाते हैं, और हमारे दुनिया में हमारे पास ये डिग्रियां हैं। अल्लाहु अकबर। अगर हम अपने सदकात कोई महफूज नहीं कर पाते, अगर हम एहसान जता देते, अगर हम अजियतें देते हैं लोगों को अपनी बातों से, तकलीफ में रखा हुआ लोगों को, हमें तो सदका देने के बाद भी कहा गया तकलीफ नहीं दे सकते, हालांकि एक एहसान तो है जो दूसरे पे किया है, और दूसरे को कहा गया है, उसको वहां पे उसकी जगह पे कहा गया तुमने इसका एहसान मानना है जो तुम पे एहसान करता है, फिर भी देने वाले को कहा गया तुम अजियत नहीं दे सकते। हम तो किसी को पर एहसान नहीं भी होता तब भी अपनी बातों से अजियत देते हैं, तकलीफ देते हैं, कोई नहीं खर्च किया हुआ किसी के ऊपर, तब भी बातों से ही दूसरे को मार देते हैं। और जन्नत के लिए हमने सोचा हुआ कि जन्नत तो हमारे लिए रिजर्व है, क्योंकि हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, हमने हज कर लिया है, हमने फला फला मस्जिद या मदरसे में चंदा दे दिया, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। और ये नहीं सोचते कि एक दीनदार आदमी जो दुनिया में समझा जाता है उसका भी ये अंजाम हो सकता है कि आखरत में वो बेदीन करार दे दिया जाए और अल्लाह ताला की रहमत से दूर कर दिया जाए, क्योंकि वो एहसान जताता था। अल्लाहु अकबर। और ये आजादी जो हमें आज मिली हुई ना, ये थोड़ी देर की है, बहुत ज्यादा देर की नहीं है, बहुत ज्यादा देर की नहीं है। आज हाथ पैर आजाद हैं, आज जुबानें आजाद हैं, जो मर्जी बोल रहे हैं, ये आजादी खत्म हो जानी है। हर बंदा जो आज जिंदा नजर आ रहा है, कल के दिन मौत के मरहले से गुजरेगा, फिर भी वो अपने आज में गुम है, फिर भी हर कोई अपने आज कोई संवारने में है और कल का एहसास नहीं है। वो चाहता है इंसान के मेरे आगे लोग झुके रहे, मैंने जरा सा भी किसी का किया तो वो मेरे आगे बस झुक जाए। हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह तूने तो हमारे ऊपर इतने एहसानात किए, हम उनको गिन भी नहीं सकते। अपना हाल क्या है हमारा कि हम कितना अल्लाह ताला के आगे झुकते हैं, हमारे क्या हालात हैं, हम कितना ये समझते हैं कि इसके बाद मैं तो एक एहसान किसी के ऊपर करूं और समझूं कि अब ये मेरा एहसान सारी जिंदगी ना भुलाए। भूल गया वो दिन, भूल भी गया तो उसको याद कराना है मैंने, और मैं खुद क्या करती हूं। सुबह से शाम तक जब से मैं सांस ले रही हूं, उस वक्त से आज तक रब के एहसानात के तले दबी जा रहे हैं, मुसलसल एहसानात तले दबे हैं, और कभी हम उसका एहसान नहीं मानते, लेकिन लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं वो एहसान मानती रहे। तो आज तो ठीक है, हमें कोई बड़ा दीनदार समझ सकता है, बड़ा चैंपियन समझ सकता है नेकियों का, और बड़ा कुरान वाला समझ सकता है, और जहां जाते हैं हम कुरान की धाक बिठाते रहते हैं, हम तो इतना पढ़े हुए, हमने तो इतने कोर्स कर लिए, लेकिन अगर लोगों को तकलीफें दे रहे हैं, हमारे घर वाले ही हमारी जुबानों से महफूज नहीं, या हमारे अंदर इतना तकब्बुर है अपनी शानो शौकत ही झाड़ते फिरते हैं, या इंसाफ नहीं कर रहे, अपनों में भी इंसाफ नहीं करते, या हमारी जो खलवतें हैं जब हम अकेले होते हैं अल्लाह की याद से खाली हैं, हम क्या दीनदार हैं, हम क्या कुरान वाले हैं, बस झंडे गाड़े में अपने कुरान कुरान, हम कुरान पढ़ते हैं, हम तो ऐसे करते हैं। लेकिन एक दिन आने वाला है जब हकीकत से पर्दा उठ जाएगा, कितने ही लोग होंगे जो आज बहुत बहुत दीनदार कहलाते हैं और बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए और लोगों को पॉइंट आउट करते हैं और अपना फर्ज समझते हैं सारी दुनिया बुरी हम सबसे अच्छे, उस दिन वो मुजरिमों के कटहरे में नजर आएंगे। कितने ही लोग हैं जो आज वीआईपी समझे जाते हैं, लोग झुक झुक के उनको सलाम करते हैं, उस दिन वो कीड़े मकोड़ों से भी ज्यादा हकीर दिखाई देंगे। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनका सामने आप कोई भी बात करें ना, हर बात का उनके पास जवाब मौजूद है, ऐसे तड़ाक से जवाब देंगे, उस दिन वो लाजवाब हो जाएंगे जैसे कि उनके मुंह में जुबान ही नहीं। और अल्लाह ताला को सब की हकीकत मालूम है, मगर वो इसको दुनिया में छुपाए रखता है, कम एक्सपोज करता है, लेकिन आखिरत में हर एक की हकीकत खुल जाएगी। वो वक्त आने वाला है जब अल्लाह ताला की तराजू खड़ी होगी और हर आदमी को तोल के दिखाया जाएगा वो क्या था और कौन था, और कोई इससे बच नहीं सकता। कामयाब सिर्फ वो है जो आज अपने आप को अल्लाह ताला की उस तराजू में खड़ा करके देख ले कि मैं कहां खड़ा हूं, क्योंकि जब कल तराजू में खड़ा किया जाएगा तो उस वक्त कुछ फायदा ना होगा, फिर सिर्फ बर्बादी है। ला यकदिरून अला शैई, नहीं वो कुदरत रखते होंगे ऊपर किसी चीज के भी, यानी उनका हासिल कुछ नहीं होगा, मिम्मा का सब उसमें से जो उन्होंने कमाई की, जो उन्होंने मेहनत की थी, जो इन्वेस्ट किया था। देखिए इंसान नेकी करने के लिए भी तो कितनी तरद्दुद करता है ना, कुछ करना पड़ता है, कुछ एफर्ट करनी पड़ती है, वो कुछ भी नहीं उसको मिला, नहीं कुदरत रखता किसी चीज पे भी, शही इन किसी चीज पे भी नहीं उसकी कुदरत होगी उस वक्त, इसलिए कि सब जाया हो चुका ना, कुछ भी यानी ऐसा भी नहीं होगा 50% मिल जाए, 30% मिल जाए, सब जाया हो गया। अल्लाह ताला बेनियाज है, जब कोई चीज में, हदीस का मफहूम है कि जब किसी चीज के अंदर रियाकारी आ जाती है ना, अल्लाह ताला फरमाता है तो वो इतना गयूर है, उसको इतनी गैरत आती है कि इस बंदे ने मेरे साथ किसी और को शरीक कर लिया कि उसके प्लेजर के लिए, उसकी खुशी के लिए ये कर रहा है, तो कहता है ये उसी को दे दो मुझे नहीं चाहिए। अल्लाह ताला सिर्फ उसको कबूल करता है जो खालिस सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। हम तो कबूल नहीं करते अगर हमारे शोहर आके हमें कहें मुझे तुमसे भी मोहब्बत है और फलां औरत से भी मोहब्बत है, हम कहेंगे जाओ फिर उसी के पास, हमें तो इतनी गैरत आ जाती है। और अल्लाह ताला के लिए ऐसे अमल पेश करना कि जिसके अंदर ठीक है अल्लाह भी हमें उसका अजर दे दे आखरत में, लेकिन साथ यहां पे भी दिखावा हो जाए, या साथ यहां पे भी मैं अपना दिल हल्का कर ही लूं। क्यों नहीं इसने मुझसे ऐसे बात की जैसे मैं चाहती थी। अल्लाह हुआ सेन अलीम, अल्लाह ताला बड़ा ही वुसत वाला, सॉरी ला यकदिरूना अला शैइ मिम्मा कसबू वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह ताला नहीं हिदायत देता काफिर कौम को, अल्लाह ताला नहीं हिदायत देता उन लोगों को जो नाशुक्र हैं या जो कुफर के रास्ते पर चल पड़े हों। यानी रियाकार जो है वो तो ऐसे ही है कि जैसे उसको अल्लाह पे ईमान ही नहीं है, क्योंकि रियाकारी तो काफिर की पहचान है ना, वो दिखावा करके खर्च करेगा क्योंकि उसका अल्लाह ताला पर ईमान नहीं। मोमिन तो ऐसा नहीं हो सकता। यहां पे किस हिदायत की बात की गई है? देखिए हिदायत दो तरह की होती है। एक हिदायत है जिसको हम कहते हैं हिदायत तौफीकी और एक हिदायत इरशाद। हिदायत तौफीकी सिर्फ अल्लाह ताला दे सकता है, यानी तौफीक मिल जाना यह सिर्फ अल्लाह ताला दे सकता, कोई और नहीं दे सकता। हिदायत इरशाद जो है वो क्या है? सिरात मुस्तकीम की तरफ बुलाना, जन्नत की तरफ बुलाना, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी है हादी, हिदायत देने वाला। तो अल्लाह ताला ने तो फरमाया कि ए नबी आप किसी को हिदायत नहीं दे सकते, तो फिर ये क्या कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं हो गई? नहीं हो गई, इसलिए क्योंकि हिदायत इरशाद आप दे सकते हैं, लोगों की रहनुमाई कर सकते हैं, उनको अल्लाह ताला की तरफ बुला सकते हैं, तौहीद की तरफ बुला सकते हैं, मगर हिदायत तौफीक यानी किसी के दिल में ईमान डाल देना ये सिर्फ अल्लाह ताला का काम है। तो काफरों के दिलों पे अल्लाह ताला मुहर लगा देता है, फिर उनको हिदायत नहीं मिलती। हिदायत इसका मतलब बहुत बड़ी नेमत है, जिसको हिदायत मिल जाए ना उसको शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दे दी। हम काफरों से मरहूब होते रहते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत नहीं देता, वो कितने ही दुनिया में आगे निकल जाएं, इतने ज्यादा उनको देखकर और रश करना और मुंह में पानी आना कैसे ये देखो कितने अच्छे रह रहे हैं और इनकी कितनी तरक्कियां, लेकिन ये तो देखो वो इतनी बड़ी नेमत से महरूम है। तो कभी भी उनसे मरूब ना हो। और फिर अल्लाह ताला ने हमें हिदायत की नेमत का रास्ता बता दिया, इसके ऊपर हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे। और ये भी बात है कि अल्लाह ताला से दुआ किया करें, अल्लाह मक्फीनी भी हलालिक अन हरामिक व अग्नीनी भी फतलिक अम्मन सिवा, के अल्लाह मुझे हलाल मेरे लिए काफ़ी कर दे और मुझे गनी कर दे, अपने सिवा हर एक से गनी कर दे, किसी का मोहताज ना करना। क्योंकि ये बहुत तकलीफ दे बात होती है जब किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ जाए। अल्लाह अकबर। यहां से आपको पता चल गया कि सदका करके कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना, इसीलिए छुपा हुआ सदका करना बड़ा ही सेफ अमल है। सेफ इसलिए है कि फिर इंसान जब छुपा हुआ करता तो रियाकारी नहीं होती, मगर बाज़ लोग छुपा के दे देते हैं किसी को, उसके बाद फिर लोगों को बताते फिरते हैं हमने तो फलाने को दिया था। तो ये नहीं करना। क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श का साया मिलेगा जिन लोगों को, उनमें से एक वो भी है जिसके दाएं हाथ ने दिया तो बाएं को पता ना चला, इतना छुपा के उसने दिया। अल्लाहु अकबर।